अगला श्लोक देखिए। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब जो है ये है गच्छन्त मुड़ा पदम अभ्ययन तत्पदम अभ्ययन पदम गच्छन्ती उस अभ्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। माने जो पिछले श्लोकों से भगवान बताते आए हैं को व्यक्ति से परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपनरा गच्छति इसको भी प्राप्त हो जाती है जहां से लौट करके व्यक्ति को फिर नहीं आना पड़ता। ऐसे करके उस परम पद की महिमा भगवान कहते आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि तब धाम परम मम, भगवान कहते हैं कि वो धाम मेरा धाम है परम धाम। मेरा परम धाम है मैंने वही परमात्मा है परमात्मा स्वरूप है। जो व्यक्ति अभ्य पद को प्राप्त कर लेता है वो कहाँ पहुंच जाता है? भगवान कहते हैं मेरे धाम पे पहुंच जाता है, मेरे घर पहुंच जाता है, मुझको ही प्राप्त कर लेता है वो अभ्य पद। जो अभ्य पद है वही भगवान का पद है, वही भगवान का धाम है। उसकी क्या महिमा है, कैसा है, क्या पहचान है? कहते देखो न तद्भाषयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। न शशांको न पावकः, न वहां चंद्रमा का प्रकाश है, न वहां अग्नि का प्रकाश है। ऐसा ये है स्थान है। हाँ कहते हैं कि यह है यदि गत्वा न निवर्तन्ते और वहां पहुंच करके फिर लौटते नहीं। ये पहले भी बात कह चुके तो वही यहां दोहराते हैं। यदि गत्वा न निवर्तन्ते गच्छन के अनुभा, वहां जाते हैं लेकिन न निवर्तन्ते, वहां से लौट करके नहीं आते। तद धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है। इसलिए जो परमात्म भाव है परम गति है उसको भी अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। बार बार शास्त्र में जैसा बताया गया उसका विचार करते हुए अपने क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि उस परमात्मा को प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है। शास्त्र में क्या बताया गया जो कि सच्चिदानंद स्वरूप अनंत चैतन्य सत्ता है, निर्विकार निर्लय प्रसंग होकर के सर्वत्र व्याप्त है, जो आकाश से भी महान है और व्यापक है, वो अपना वास्तविक स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप है। उस स्थिति को जो प्राप्त हो गया उसमें स्थित है वो अमृतत्व को प्राप्त हो गया, वही परम धाम को प्राप्त हो गया, वही परमात्मा को प्राप्त हो गया, वही मुक्त हो गया, उसी को कैवल्य पद प्राप्त हो गया। ये बात इस प्रकार से उस स्थिति का चिंतन करते हुए उसको समझ लेना चाहिए कि ये परम धाम किस प्रकार का है। इस बात को फिर देखो कि न तद भाषय थे सूर्य, अब ये न तद भाषय थे सूर्य क्या है? ये उपनिषद का ही मंत्र है जिसको आप बार बार बोलते रहते हो। कोई यहाँ पर उसका जो है वो हो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम और नेमा दुर्गतो भांति कुतो यम अग्नि ही तमयो भांतम अनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाते। ये जो श्लोक है उसी का अनुवाद संक्षेप में एक पंक्ति में भगवान ने बोल दिया। पूरा श्लोक था वो, उस श्लोक को आधी पंक्ति में यहाँ पर न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका, बस उसकी याद दिला दी भगवान ने कि देखो उपनिषदों में कहा गया कि वो स्थान ऐसा है। पूरा उसका विस्तार देखना हो तो उपनिषद का मूल जो मंत्र है उसको न तत्व सूर्यो भात में चंद्र तारकम। अब न तत्व सूर्यो भात के मैंने कहा है सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं होता। अब आपको ये लगेगा पहले तो अज्ञान के कारण कि देखो बड़ा अंधेरा होगा, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं है तो कितना अंधा को पकड़ा होगा। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है कि सूर्य को, सूर्य तो इतनी क्षमता ही नहीं कि उसको प्रकाशित करे, बल्कि उल्टी बात तमेव भान तमन बात सर्वम, उसी की उस परम धाम की परमात्मा की यह महिमा है कि उसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सूर्य का प्रकाश उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। तो देखो जब अपने आप अपने भीतर आप विचार करना शुरू करोगे अध्यात्म विद्या का तो ये सब बातें अपने भीतर दिखाई देने लगी। देखो कि ये प्राण क्या मन बुद्धि को जानते हैं कि मन बुद्धि प्राण को जानते हैं? तो आप कहोगे कि देखो प्राण मन को प्रकाशित नहीं करता, लेकिन मन प्राण को प्रकाशित करता है। दिखाई दिया अपने भीतर, नहीं दिखाई दिया तो कहते ना हमें प्राण दिखाई दे ना हमें मन दिखाई दे, क्या बताऊं। अब कुछ दिखाई नहीं देता तो उसको देखने का अभ्यास करो, अपने हृदय में रहने की कोशिश करो, अपने अंदर रहने की कोशिश करो, देखो मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्राण क्या है, इनको पहचानो, फिर देखो कि कौन तुमको भाषित करता है, कौन किसको प्रकाशित कर रहा है। वो उदाहरण बता रहे हैं इसी प्रकार से, देखो सामने रख लो। और शंकराचार्य कहते हैं बहुत भाई अपने भीतर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, एक दीपक जला के रख लो और एक उसके सामने घड़ा रख लो। अब बताओ कि घड़ा दीपक को प्रकाशित कर रहा है कि दीपक घड़ा को प्रकाशित कर रहा है, क्या भी नहीं समझ में आता। अब तो समझ में आता है कि दीपक के प्रकाश में घड़ा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन दीपक अपने आप प्रकाश है, घड़ा तो उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। घड़ा स्वयं प्रकाशक स्वरूप नहीं है, पर प्रकाशक भी नहीं है, लेकिन दीपक जो है वो स्वयं प्रकाशवान भी है और घड़े को भी प्रकाशित करता है। ऐसे उदाहरण लेकर के सीखो। इसी प्रकार से सारे संसार को तो जगत को तो सूर्य प्रकाशित कर रहा है, और ये सब वस्तुएं जितनी अंधकार में वस्तुएं जिनमें स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से वो वस्तुएं सब प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन ये सब वस्तुएं सूर्य को प्रकाशित नहीं करते, सूर्य इन सबको प्रकाशित करता है। लेकिन सूर्य के आगे ऐसा भी है कि सूर्य के आगे सूर्य से भी सूक्ष्म, उससे भी महान, उससे भी ज्यादा तेजस्वी कुछ है जिसे कि सूर्य प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वो सूर्य को प्रकाशित करता है। तब धाम परम। अब देखो ये पता बताया कि वहां तक पहुंचोगे तब जब उसको जो सूर्य भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता, बल्कि सूर्य जिससे प्रकाशित होता है, तो उस स्थान पर पहुंचोगे तब पता चलेगा कि देखो हम परम धाम को प्राप्त हो गए। अब इसी बात को अपने हृदय में देखो, अपने हृदय में देखो, हृदय में विचार करो कि देखो ये मन बुद्धि की वृत्तियां हैं। मन में अपने मंत्र का जप करो और मंत्र अपने मन में सुनो, मन को मंत्र को अपने मन में देखो और ये देखो कि ये कैसे दिखाई देता है, यहाँ कौन सी रोशनी है, दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, कि दिखाई दे देता है, सुनाई देता कि नहीं सुनाई देता, कि सुनाई तो देता है, तो किस प्रकाश में सब अनुभव में आ रहा है। वहां सूर्य है क्या, नहीं है सूर्य, में चंद्रमा है क्या, चंद्रमा नहीं है, कौन सी रोशनी है, बिजली जल रही है कोई वहां पर, जब नहीं वहां भौतिक प्रकाश कोई नहीं है तो आपके हृदय में जो कुछ है वो कैसे दिखाई देता है। अरे ऐसे देख लो, आपसे कहें कि एक कमल के फूल का स्मरण करो, आपने स्मरण कर लिया, आपके मन में कमल का फूल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब बताओ कैसे दिखाई दे रहा है आपको, बिना प्रकाश के तो दिखाई नहीं देगा। अगर अपने हृदय में कमल का फूल दिखाई दे रहा है इसका प्रकाश जरूर है, तो कौन सा प्रकाश, चेतना का प्रकाश, चेतना भी प्रकाशमान है। जैसे भौतिक सूर्य इत्यादि ये प्रकाशमान है, ऐसे चेतना भी प्रकाशमान है। अब चेतना का प्रकाश देखो और भौतिक प्रकाश देखो, भौतिक प्रकाश चेतना के प्रकाश को प्रकाशित नहीं करते, बल्कि चेतना का प्रकाश भौतिक प्रकाश को प्रकाशित करता है। अब अगर आप अंधेरे में बैठे हो, तो अंधेरे में बैठे होने पर आपको नहीं दिखाई देगा आसपास कमरे में क्या क्या वस्तुएं रखी हुई है, क्योंकि उन सब वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला प्रकाश चाहिए, अंधेरा हुआ है तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या आपको यह भी नहीं दिखाई देगा कि हम यहां बैठे हैं, करे अब आप कहो अंधेरे में को पूछो कि भाई तुम कहां हो, हाँ? तो कोई ये चिल्लाएगा कि हम अंधेरे में बैठे हैं, हमें नहीं दिखाई देता हम कहां हैं। अरे भाई अंधेरे में हो चाहे उजेले में हो, हर व्यक्ति को अपने होने का बोध तो होता ही है। वो किस प्रकार से दिखाई देता है कि मैं हूं, चेतना के प्रकाश में दिखाई देता है। इसलिए चेतना के प्रकाश को पहचानो, सूर्य के प्रकाश को पहचानो और दोनों की तुलना करो कि भौतिक प्रकाश से चेतना प्रकाशित होती है, चेतना से भौतिक प्रकाश प्रकाशित होता है। अगर चेतना ना हो तो सूर्य का प्रकाश चाहे जितना प्रकाश हो गया पता चलेगा यह है कि नहीं है, तो चेतना के प्रकाश से मालूम होता है कि सूर्योदय हो गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया। लेकिन सूर्य के प्रकाश में क्या यह प्रकाशित होता है कि आज रात में कितने आदमी मर गए, कितने जिंदा है, उसके प्रकाश में पता नहीं चलेगा, कितने में चेतना है कितने अचेतन पड़े हुए, सूर्य के प्रकाश क्या पता। तो इस प्रकार से देखो, तब कहते हैं कि देखो इस श्लोक से तात्पर्य यह है कि अपने हृदय में जब अध्यात्म विद्या हो गई, अध्यात्म विद्या, तो उसमें सब बातों को अपने भीतर देखो और ये भी देखो कि जो हमें प्राण दिख रहा है वो किस चेतना में दिख रहा है, मन बुद्धि हमें दिख रहे हैं वो किस चेतना में दिख रहे हैं, हमें जो वासनाएं दिख रही हैं वो किस चेतना में दिख रही हैं, हमें सत्वगुण दिख रहा है रजोगुण दिख रहा है वो किस चेतना में दिख रहा है, हमें अपना स्वभाव दिख रहा है वो किस चेतना में दिख रहा है। और फिर देखो ये चेतना अभौतिक चेतना है, दिव्य चेतना है, उस चेतना को पहचानने की कोशिश करो। श्लोक का तात्पर्य यह हुआ, इसलिए कहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में जाना पड़ेगा और चेतना के प्रकाश को पकड़ना पड़ेगा, उसी के प्रकाश में ये रास्ता आपका आगे बढ़ेगा और उसी के प्रकाश में आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे भी। अब थोड़ी बात और देखो, वेदांत क्या कहता है इस श्लोक का। वेदांत कहता है न तद्भासयते सूर्यो, माने सूर्य के प्रकाश में वो आत्मा की या परमात्मा की या साक्षी चैतन्य को प्रकाशित ये नहीं कर सकते, सूर्य नहीं कर सकता। और सूर्य नेत्र का उपकारी है, इसलिए नेत्र से भी वो दिखाई देने वाला नहीं है। अगर हम अपने आत्मा को अपनी आंखों से देखना चाहें तो नहीं दिख सकता, क्योंकि आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी है, यह है उसको आत्मा को परमात्मा को देखने के लिए जितनी क्षमता होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, वो आंखों में नहीं है, वो सामर्थ्य सूर्य में नहीं है, इसलिए इनके द्वारा वो आत्मा दिखता नहीं है। जो व्यक्ति कोशिश करता रहे वो परमात्मा आंखों से दिखे, वो परमात्मा आंखों से दिखे, इसके माने क्या है? उल्टा काम सोच रहा, विपरीत विचार कर रहा, जो संभव नहीं उस बात को सोच रहा। इस प्रकार से देखेंगे कि वास्तव में वो नेत्रों से दिखने वाला परमात्मा नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक मन है, एक उसके बाद एक मन है, मन जो है वो हो चंद्रमा का प्रतीक है, वो परमात्मा मन से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, चंद्रमा का प्रकाश ही उसे प्रकाशित नहीं करता। इसके माने इंद्रियों से तो वो आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं, मन से भी उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। मन जब बोल दिया, जब नेत्र बोल दिया, तो नेत्र के माने हो गया जितनी पांचों ज्ञान इंद्रियां। मन अगर बोल दिया तो मन के हो गए मन बुद्धि चित्तांकार, ये अंताकरण चतुष्टय के द्वारा परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। ये परमात्मा के प्राप्त करने में एक सीमा तक सहायक जरूर हैं, लेकिन उसके आगे इनके द्वारा परमात्मा दिखने लगे तो दिखेगा नहीं। इसलिए न शशंका और न पावका, पावक जो है उससे पावक के माने वाणी, वाणी जो है उसके अधिष्ठात्र देवता पावक है, इसीलिए कहते हैं इनको सबको पहले याद करके रखो, पांच कर्मेंद्रियां क्या है, उनके देवता क्या है, पांच ज्ञानेंद्रियां क्या है, उनके देवता क्या है, क्योंकि अपने शास्त्रों में वर्णन इन्हीं देवताओं के माध्यम से होता रहता है। और पहले से आप याद करके नहीं रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अग्नि किसको बोल रहे हैं, ये अग्नि बोल रहे हैं, अग्नि अधिष्ठात देवता और वाणी में उसका वास है, इसलिए वाणी के द्वारा भी उसका बोध नहीं होता। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचा निवर्तन्ते, मैंने वाणी भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, वहां मन जो है उसको भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, मैंने आत्मा को परमात्मा को मन वाणी से जान सकती है, पहुंच सकती है, न मन पहुंच सकता है। वाणी की बात क्यों कह दी, कहे कि देखो जो चीज आंखों से नहीं दिखाई देती और जो चीज मन से नहीं दिखाई देती वो वाणी से दिख जाएगी। वाणी से भी दिखाई देता है, वाणी से क्या दिखाई देता है, अगर अंधेरे में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो अंधेरे के कारण से वो व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा, आंखों से नहीं दिखाई देगा। आप अपने मन से कल्पना करो कि कोई बैठा हो सकता है इस कमरे में कि नहीं बैठा हो सकता है, तो आप अपने मन से भी उसे नहीं जान सकते। लेकिन आपने पूछा कि तुम कहाँ हो, नाम लेकर उसको पूछा, तो अंधेरे कमरे में वो बैठा हुआ बोला हम यहाँ हैं। जब उसने बोला हम यहाँ हैं तो उसकी आवाज जब आपके कान में आई तो आप व्यक्ति आपको दिख गया कि नहीं दिख गया, देखो क्या हम समझ गए कि तुम यहां बैठे हो। वाणी से भी दिखाई दे जाता, और ये सब बात हम आपको जो बता रहे हैं ये सब उपनिषदों में लिखी हुई, बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे ही इस सबका उदाहरण वहां दिया गया है कि वाणी के द्वारा भी व्यक्ति जाना जाता है। इस प्रकार से जहां पर के नेत्राज नहीं जाते हैं वह वाणी के द्वारा उसको जान लेते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा है जो वाणी से भी परे है, वाणी के द्वारा भी है, परमात्मा की कोई आवाज भी नहीं आएगी जो परमात्मा बोले हम यहां आ जाओ। इसलिए आपको वहां परमात्मा तक जाने के लिए अपने इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को, अपनी कर्मेंद्रियों को, इन सब को छोड़ करके तब आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंचोगे। जब परमात्मा में पहुंचे तो वहां पर क्या क्या है, वहां न मन है न बुद्धि है, वहां परमात्मा में ज्ञानेन्द्रियां हैं न कर्मेंद्रियां हैं, न वहां सत्वगुण है न रजोगुण है, न वहां तमोगुण है, न वहां कोई शरीर है, न वहां कहीं कोई जीव है, न वहां कहीं कोई जगत है, एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त होकर के अनंत चैतन्य होकर के विद्यमान है। तो भगवान कहते हैं कि तद धाम परम मम, वो धाम मेरा है। और धाम के माने आपको समझना है, धाम माने घर, तो वो मेरा घर है, और एक सीमित ऐसे करके कोई कमरा होगा वहीं भगवान रहते होंगे, ऐसे नहीं है। वो धाम कहलाता है, लेकिन धाम का अर्थ दूसरा है। देखो धाम के दो अर्थ होते हैं, एक धाम का मान निवास स्थान, और संस्कृत में डिक्शनरी देखो तो वहां धाम का अर्थ है तेजोमय। भागवत में एक श्लोक आता है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। वो धामना माने धामना स्वेन, वो अपने साथ अपने आप ही अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, धामना स्वयं। निरस्त कुहकम, वो अंधकार का विनाश करने वाला है। तो वहां धामना के माने क्या हुआ, धाम से बना धामना, धाम के माने तेज, तेजो में प्रकाश स्वरूप। कहते हैं कि तद धाम परम मम, ऐसा चमचमाता हुआ हमारा स्थान है, ऐसा प्रकाशवान हमारा स्थान है, वहां पर व्यक्ति पहुंच जाता है। इसलिए जो संकीर्ण बुद्धि प्रारंभ में शास्त्र से मिलती है उसका भी विस्फोट करो और सही सही दृष्टि अपने अंदर लाओ। धाम के मन मकान पकड़े मत बैठे रहो कि कोई मकान होगा, कोई जगह होगी, कोई लोक होगा, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। वो लोकातीत परमात्मा है, वहां कोई मकान नहीं है, वहां कहीं कोई रचना नहीं है, वो सब रचनाओं के अतीत, सब न स्थूल न सूक्ष्म, इन सब के पार होकर के वो स्वयं अपनी सत्ता से अनादि अनंत होकर के विद्यमान है। उस परमात्मा को देखो। Thank you.